તારીખ 4/9/1995, પૂજ્યબેન શ્રીના વચનામૃત, બોલ નંબર 389 અને 333 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 350.
ઉત્તમ સ્વયં કિસકો કહેતે હૈ, આત્મ સ્વભાવથી શ્રદ્ધા જ્ઞાનપૂર્વક શુભ ઔર અશુભ ભાવોં કો રોક કરકે આત્મા મેં એકાગ્ર હોના, યે પરમાર્થ સે ઉત્તમ સંયમ ધર્મ હૈ. ઉત્તમ મેને સમ્યક પ્રકાર સે, સંયમ મેને આત્મા મેં લીન હોના, સર્વ નિયો સે સર્વ વિષયો સે ઉપયોગ કો સમેટ કર સ્વરૂપ મેં સંયમિત હો જાના, લીન હો જાના, ઉસકો ઉત્તમ સંયમ ધર્મ કહેને મેં આતા હૈ. તો વિતરાગ ભાવ સ્વરૂપ હૈ સંયમ કા વિકલ્પ, વો સંયમ ધર્મ વો બાત નહીં હૈ. જબ એસા વિતરાગ ભાવ ન હો સકે, જબ એસા વિતરાગ ભાવ શુદ્ધોપયોગ નહીં હોવે, તબ સમ્યક શ્રદ્ધા જ્ઞાન પૂર્વક અશુભ રાગ કો છોડકર છકાય જીવો કી રક્ષા કા, છ પ્રકાર કે જીવો કી રક્ષા કા શુભ રાગ હોતા હૈ, ઉસકો વ્યવહાર સંયમ કહેને મેં આતા હૈ. મન વચન કાયા કી પ્રવૃત્તિ સે, એકેન્દ્રિય સે લેકર કે કિસી ભી પ્રાણી કો દુઃખ ન પહોંચે, તકલીફ ન પહોંચે, પ્રાણઘાત ન હોવે, એસા જો પરિણામ ઉસકો વ્યવહાર સંયમ કહેતે હૈ, ઔર એસી પ્રવૃત્તિ કો ભી વ્યવહાર સંયમ કહેને મેં આતા હૈ. યહાં પર પદ્મબિંદુ પંચનિષ્ઠિ કા મેં આચાર્ય દેવ સંયમ ધર્મ કા વર્ણન કરતે હૈ. જંતુ કૃપાર્જિત મનસઃ સમિતિષુ સાધોઃ પ્રવર્તમાનસ્ય પ્રાણેન્દ્રિય પરિહારમ સંયમમ આહુર મહામુનયઃ. જેનું ચિત્ત દયાથી બિંદાયેલું છે, કૃપા આર્જિત મનસઃ બીજા જીવો પ્રત્યે જેનું ચિત્ત દયાથી બિંદાયેલું છે, સૌથી વધારે વ્યવહાર દયા, સૌથી જ્યાદા વ્યવહાર દયા બી મુનિરાજ કો હોતી હૈ. ક્યોંકિ મુનિરાજ કી પ્રવૃત્તિ એસી હોતી હૈ કે કહીં ભી કિસી કો કિસી જીવ કો ભી દુઃખ નહીં પહોંચે. જિસકા ચિત્ત દયા સે ભીગા હુઆ હૈ ઔર જો સમિતિ મેં પ્રવર્તમાન હૈ, પાંચ સમિતિ ચલને કા બોલને કા ચીજ વસ્તુ રખને કા, એસા જો સમિતિ મેં સંયમિત રૂપ સે પ્રવર્તમાન હૈ, તથા ઇન્દ્રિય વિષયો કા જિસકો ત્યાગ હૈ, પંચેન્દ્રિય કા વિષય કા જિસકો ત્યાગ કર લિયા હૈ, પરિણામ ભી નહીં હૈ ઔર પ્રવૃત્તિ ભી નહીં હૈ, એસે મુનિવરો કો સંયમ ધર્મ હૈ, એસા મહામુનિ જિનેન્દ્ર આદિ મહામુનિ કહેતે હૈ, આચાર્ય આદિ મહામુનિ કહેતે હૈ કે ઉસકો સંયમ ધર્મ કહેના ચાહીએ. એ મુનિરાજ કી બાત હૈ, તો હમકો ઉસ બાત સે કિતના સંબંધ હૈ, કે એસે મુનિયો કે ધર્મ દેખ કરકે, મુનિયો કે ગુણ દેખ કરકે ઉસકી ભક્તિ કે પરિણામ હોતે હૈ. ક્યા હોતે હૈ? ભક્તિ કે પરિણામ હોતે હૈ. તો ઉસકી ભક્તિ કે પરિણામ હોને સે દર્શનો કી મંદતા હોતી હૈ. પહેચાન કરકે સમજ કરકે धर्मात्मा के सम्यक दृष्टि की या श्री गुरु की भक्ति होती है तो भक्ति करने वाले को दर्शन होने का परिणाम घटता है, कम हो जाता है। ये इतना प्रयोजन है, वरना कोई ऐसे उसको निकाल दे। गुरुदेव ने प्रवचन किए तो फालतू के किए क्या? प्रवचन इसलिए किए कि मुनिराज का स्वरूप ज्ञान में आए, मुनिराज की पहचान हुए, भावलिंगी मुनि कैसे होते हैं उसकी पहचान हुए, तो जो अमुनि है उसको मुनि माने नहीं, एक तो यहां से बचेगा, दूसरा सच्चे मुनि की भक्ति आएगी, वो भक्ति करने लायक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दशलक्षण पर्व है वो तो मुनि भक्ति का पर्व है। इसका पर्व है मुनिराज की, यानी अपने श्री गुरु की, एक गुरु है, निग्रंथ गुरु है, इनकी भक्ति के पर्व है। इसकी भक्ति जितनी होए सोच करके समझ करके उतना लाभ का ही कारण होता है। हाँ, भक्ति में ऐसी दशा हमें कब प्राप्त हो, अपूर्व अवसर वो प्यारे आवे, वो बात है, उसमें भावना भाने की बात होती है। जिनको आत्मधान पूर्वक वितराग भाव रूप अकसाई करुणा प्रकटी है, प्रकट की प्रकट हुई है, इसको भी करुणा कहते हैं। क्या? जो अकसाई वितराग भाव है वो तो निश्चय करुणा है, वो तो स्वदया है। ऐसी करुणा जिसको अपने आत्मा की प्रकट हुई है, ऐसे जीव को अन्य किसी प्राणी को दुख देने का अभिप्राय नहीं होता, पर मुनिराज को तो विकल्प भी नहीं होता। जिसने अपने आत्मा में करुणा प्रकट की, वितराग भाव प्रकट किया, तो सम्यक दृष्टि को भी अभिप्राय चला जाता है, लेकिन कुछ क्रियाएं रह जाती है, कुछ विकल्प भी रह जाता है। मुनिराज को न तो विकल्प रहता है न तो क्रिया रहती है, उतनी करुणा स्वपर ही, स्वपर दोनों की उतनी करुणा है। उनको तो दूसरे प्राणी को दुख देने का विकल्प ही नहीं होता है, इसलिए उनका चित्त दया से भिगा हुआ है ऐसा कहने में आता है। बहुत बहुत दया भरी है, वो तो दया के सागर है, करुणा के सागर है, ऐसा बोला जाता है। वास्तव में तो राग भाव है वह आत्मा की हिंसा है। जो राग है वो आत्मा के शांति को, आनंद को मारता है, तो आत्मा की हिंसा है उसमें, क्योंकि उसमें अपना आत्मा का चैतन्य प्राण का घात होता है। इसलिए उसमें स्वजीव की दया नहीं है, राग में स्वजीव की दया नहीं है। जिसको स्वजीव की दया नहीं आई उसको पर की दया यथार्थ रूप से हो सकती नहीं है, भले कितनी भी पाले। वितराग भाव वही सच्ची दया है, क्योंकि उसमें स्व और पर किसी जीव की हिंसा का भाव नहीं होता। अकसाई परिणाम में न स्वजीव की हिंसा का परिणाम है, न पर जीव की हिंसा का परिणाम है। ऐसी वितराग दया से जिसका चित्त बिगड़ा हुआ है, यह मुनिवरों को उत्तम संयम धर्म होता है, ऐसे मुनियों को उत्तम संयम धर्म होता है। और संपूर्ण वितराग भाव न हो और रात की वृत्ति उठे, तब पंच समिति में प्रवत्न रूप शुद्ध भाव होते हैं, पांच महाव्रत पांच समिति तीन गुप्ति में प्रवृत्ति करने का सुझाव आता है, उसी को मूल व्यवहार से संयम धर्म कहने में आता है। परमार्थ से तो वितराग भाव वही धर्म है, राग शुभराग और वही धर्म नहीं है। इंद्रियों को विषयों को या जीव हिंसा को तो विकल्प या जीव हिंसा का तो विकल्प मुनि को होता ही नहीं। विकल्प आता है और प्रवृत्ति नहीं करता है, दबाता है, वो बात नहीं है, होता है उत्पन्न ही नहीं होता। उतनी वितरागता उत्पन्न हो गई है कि उसको विकल्प उत्पन्न होता नहीं है, विकल्प का अभाव हो गया है। परंतु देख करके चलना इदिया समिति, चार हाथ नीचे देख करके चलना इत्यादि प्रकार के शुभ विकल्प आता है, उसको भी तोड़ करके समाज के प्रति बनने का प्रयत्न, झुकने का प्रयत्न उनको वर्तता है। जितने अंश से विकल्प का अभाव किया उतने अंश से वितरागी संयम धर्म मुनिराज को प्रकट होता है। उस विषय में अपूर्व अवसर के एक पंक्ति का भी यहां उद्धरण किया है। संयमना हेतु थी योग प्रवर्तना, मन वचन काया अन्य योगनी प्रवृत्ति, संयम का हेतु से, संयम पालने का हेतु से होती है मुनिराज को। और स्वरूपों को लक्ष्य में रख करके, स्वरूप को लक्ष्य में से छोड़ करके नहीं, स्वरूप लक्ष्य बिना ना अधीन जो, इस वक्त तो कलकत्ता में उस पर स्वाध्याय हुआ था, पूर्व अवसर पर स्वाध्याय चला था अपना। स्वरूप लक्ष्य बिना ना अधीन जो, मैंने शास्त्र में जैसा मर्यादा में बात कहा है, शास्त्रोक्त विधि से वो बिना गया है, पण क्षण क्षण घटती जाती स्थिति में वो जो व्यवहार है वो प्रत्येक समय क्षीण होता जाता है और निश्चय परिणति बढ़ जाती है। तो अंत था निज स्वरूप लिंग, ऐसी भावना सम्यक दृष्टि ज्ञानी को भी आती है कि हम कैसे पूर्व अवसर ऐसा हमारा कभी आएगा और हम स्वरूप में लीन हो जाएंगे। कितना रखे आपके संयम धर्म के विषय में, अब जो है बहन श्री के वचनामृत में वचनामृत नंबर 386 3 8 और 6 क्या कहते हैं, बाह्य क्रियाएं मार्ग नहीं बतलाती, ज्ञान मार्ग बतलाता है। प्रताप देव ने कहा कि सत्संग है वो सर्वोत्कृष्ट निर्वाण का हेतुभूत साधन है। धर्म के क्षेत्र में अनेक प्रकार के साधन का उल्लेख है, कोई माला फेरता है, कोई पूजा भक्ति करता है, कोई स्तवन भक्ति करता है, तो कोई उपवास आदि करता है, ये सब क्रियाएं हैं। और शास्त्र लेकर एक घंटा बैठना वो भी क्रिया है, वो भी बाह्य क्रिया है। अंतरंग क्रिया ज्ञान का परिणाम है, बाह्य क्रिया कहां तक है। तो मन वचन काया के योग की जो भी प्रवृत्ति है उसको बाह्य क्रिया कहने में आता है। बाह्य मैंने क्या, आत्मा से बाहर जो है उसको बाह्य कहने में आता है। तो मार्ग नहीं बतलाते, उससे मोक्ष मार्ग का पता नहीं चलता, क्योंकि वो तो जड़ की क्रिया है। और उस क्रिया के समय में जीव के परिणाम क्रिया के प्रति लगता है, जैसे हम पूजा की क्रिया करते हैं, तो जब जल चढ़ाने का आएगा तो वहां परिणाम लगेगा। अष्ट ग्रह है ना, तो दो दो ग्रह की बारी आएगी तो वो ग्रह चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे, तो इसका सब उपयोग वहां जाएगा। तो उपयोग जड़ाश्रित है, चैतन्य आश्रित नहीं है, तो मार्ग यहां से नहीं मिलता, यहां से मार्ग
नहीं मिलता।
ज्ञान मार्ग को बदलाता है, ज्ञान क्रिया वो सच्ची क्रिया है, ज्ञान का परिणमन तो ज्ञान क्रिया है, और वही आत्मा की अंतर क्रिया है, और ये बाह्य विकल्प वाली बाह्य क्रिया है।
ज्ञान का परिणमन तो भक्ति है, ज्ञान का परिणमन भक्ति है, और भक्ति का परिणमन मार्ग ही
है। वो भक्ति बराबर है, जो भक्ति ज्ञान रूप है वो मार्ग ही खाती है। उसमें बहुमान आता है, तो बहुमान है वो ज्ञान मार्ग दिखाता है, लेकिन क्रिया मार्ग दिखाती नहीं है। यहां तो क्या बराबरी किसके साथ हो रही है, कि जो मन वचन काया की जड़ की क्रिया है और जीव के ज्ञान के परिणाम की क्रिया है, दोनों की बराबरी करते हैं, तो क्रिया मार्ग बतलाती नहीं है। मोक्ष के मार्ग का प्रारंभ सच्ची समझ से होता है, क्रिया से नहीं। क्यों ऐसा कहा, तो कोई ऐसा विचार करता है कि हम तो नए नए हैं, तो नए नए लोगों को पहले पूजा भक्ति तो करें, पहले ये सब बातें समझ में नहीं आएगी, तो हम पहले पूजा भक्ति में लगे रहे, क्या वो ठीक है, उसका स्पष्टीकरण देते हैं। तो मोक्ष के मार्ग का प्रारंभ सच्ची समझ से होता है, क्रिया से नहीं होता है, अस्ति नास्ति करके अनेकांत किया है। द्रव्यानी योग तो प्रयोजन, द्रव्यानी योग में प्रयोजन भूत बातें बहुत है, अन्य तीनों अनुयोग में प्रयोजनभूत बात तो है, लेकिन द्रव्यानुयोग में ज्यादा है, उतना विशेष बात है। वो द्रव्यानुयोग में भी अप्रयोजनभूत विषय को गौण करके मात्र प्रयोजनभूत विषय को हाथ में लेना, तो मात्र प्रयोजनभूत विषय माने क्या, कि अपने को वर्तमान भूमिका में अपने परिणाम सुधार करने में जो उपयोगी हो, ऐसी बात को पहले समझना, ऐसी बातों को पहले समझना, उसको अग्रता क्रम देना, वो तो प्रयोजनभूत है। पर ऐसे सोच अपने को स्वयं को आनी चाहिए, या सत्संग से मिलनी चाहिए, ऐसा कैसे होता है। यहां कहते हैं कि मोक्ष के मार्ग का प्रारंभ सच्ची समझ से होता है, मोक्ष के मार्ग का प्रारंभ जो है वो सच्ची समझ से होता है। सच्ची समझ करना मैंने आत्महित के लिए जो समझ है, वही अपने आत्महित के लिए जो समझ है, वही सच्ची समझ है। परलक्ष से होने वाली समझ वो सच्ची समझ
नहीं है।
क्या है कि जीव की दृष्टि अनादि से अपने पर नहीं है, इसलिए पर का देखता रहता है। क्या करता है,
पर का देखता रहता है,
ऊपर का देखता रहता है, उसने क्या किया, फलाना ने क्या किया, फलाना क्या कर क्या करता है, वो क्या करता है, वो क्या करता है, तो उसमें अपना प्रयोजन है वो छूट जाता है, अपना प्रयोजन है वो छूट जाता है जी। इसलिए सच्चे समझ में क्या आता है कि प्रयोजन की मुक्तता आती है, वही सच्ची समझ है। जिसमें अपने प्रयोजन की मुख्यता नहीं हो वो तो सच्ची समझ नहीं है। सच्ची माने यथार्थ, सच्ची माने यथार्थ, जहां जो अपने को होनी चाहिए ऐसी।
प्रयोजन का पकड़ है इसके साथ दर्शन मोह का संबंध
है।
प्रयोजन के पकड़ के साथ दर्शन मोह का
डायरेक्ट, हाँ दर्शन मोह का संबंध है। जिसको दर्शन में तीव्र होता है तो प्रयोजन के विषय में कच्चा रहता है, या वो प्रयोजन के विषय में बार बार भूलता है। और जिसको दर्शन में कम हुआ हो उनको प्रयोजन के तीक्ष्ण और सूक्ष्म दृष्टिकोण उसको साध्य हो जाता है, पकड़ आ जाती है, ऐसी बात है।
जो भक्ति के स्वरूप को सही दिखा रहे, जैसा भक्ति का स्वरूप हो वो सच्ची समझ गिननी चाहिए।
हाँ, भक्ति के स्वरूप का और आत्महित के कोई भी विषय हो, भक्ति हो, जितने जितने भी पहलू हो आत्महित के,
एक ही पहलू है भक्ति पहलू है कि दूसरा भी कोई पहलू
हो, उसमें क्या क्रम से तो अलग अलग भूमिका में अलग अलग बात तो आएगी ना। भक्ति तो है ही, भक्ति नहीं है सो बात नहीं है, लेकिन पहचान पूर्वक जो भक्ति होती है, या निष्काम पहचान के पहले या निष्काम भक्ति होती है, वो अपने स्थान में ठीक है। वरना भक्ति बहुमान है लेकिन यथार्थ नहीं आएगी। तो यथार्थ आने के लिए वेदना और उदासीनता और लक्ष्य आदि होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। बराबर संबंध है, जिसको साथी समझ होगी उनको पूर्णता का लक्ष्य भी आएगा, और जिसको पूर्णता का लक्ष्य आएगा उसकी समझ भी यथार्थ हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। जैसे पूर्व भूमिका में जिसको ऐसा ऐसी सूझ आई कि मेरा साध्य पूर्ण शुद्धि का होना चाहिए, तो यथार्थ समझ से आई, और जिसको ऐसा पूर्ण शुद्धि का लक्ष्य हुआ उसका विपरीत अभिप्राय छूट जाएगा, तो समझ यथार्थ हो जाएगी।
पहले वाली समझ यथार्थ नहीं थी,
नहीं वो भी यथार्थ है ना, वो भी यथार्थ है। एक अगले अगले स्टेज वाला है, वो पीछे के स्टेज वाला है। समझ में तो बहुत सी बातें हैं, समझ में तो बहुत सी बातें होती हैं, फिर नीचे के स्तर में आती है, फिर ऊपर के स्तर में, फिर ऊपर के स्तर में, फिर वो आगे बढ़ करके सम्यक ज्ञान रूप हो जाती है। यथार्थता आगे बढ़ करके सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो जाती है, तो यथार्थ ज्ञान का यही फल आता है। यथार्थता पर थोड़ा आएगा, यथार्थता पर थोड़ा समय तो लगता है, समय ही कहाँ लगता है, लिखने में तो घंटों का समय चाहिए। इसलिए प्रत्यक्ष गुरु का उपदेश और परमागम का प्रयोजन भूत ज्ञान, देखा सब लिया है बंसरी ने, प्रत्यक्ष गुरु का उपदेश और परमागम का प्रयोजन भूत ज्ञान मार्ग प्राप्ति के प्रबल निमित्त है। इसमें भी क्रम दिया है, दिया क्या नहीं आता है क्या नहीं क्रम के प्रथम तो प्रत्यक्ष गुरु का उपदेश उसको प्राथमिकता देना उसको मुख्य करना। अगर प्रत्यक्ष गुरु का उपदेश संभव नहीं हो उपलब्ध नहीं हो उसी काल में परमागम का प्रयोजनभूत ज्ञान करना परम परमागम में से प्रयोजनभूत विषय का ज्ञान करना। ऐसा नहीं है कि कोई भी परमागम हम पढ़ ले ऐसा होना चाहिए
नहीं।
जिसमें से हमारे हमारी योग्यता में जो बातें हम लागू कर सकें और लागू करने से तो उपदेश हमारे अंतर में परिणमन हो गए ऐसे ग्रंथ को ऐसे परमागम को पढ़ना तो परमागम का प्रयोजन भूत ज्ञान है। किसका नहीं मैंने वो अवेजी है क्या कि नहीं है
दूसरा क्रम क्यों रखना।
ऐसा है कि श्री गुरु का प्रत्यक्ष उपदेश हमेशा हमेशा किसी को मिलता नहीं है ये हमेशा मिलने का संभव नहीं है। फिर भी कोई ऐसे भी होते हैं कि जो गुरु चरण में हमेशा निवास कर लेते हैं उनकी सेवा में लग जाते हैं तो उनको मिलता भी है दो भाग नहीं मिलता है उस वक्त क्या करें आश्रय भक्ति में रहे वो भी ठीक है भावना में रहे तो उसका आश्रय हमेशा हमको मिला करे वो भी अच्छा है। और फिर जब सच्ची समझ से मार्ग मिलता है तो सच्ची समझ का दो निमित्त है क्या लिया है उधर दो प्रबल निमित्त है जो परमागम है उसमें निमित्तत्व है कि नहीं है। परमागम में अगर निमित्तत्व बिल्कुल नहीं होता तो संस्कारी जीव को ज्ञान नहीं होता। परमागम में अगर निमित्तत्व होता ही नहीं वो द्रव शुल्क बोला जाता है। परमागम को क्या बोलते हैं तो ज्ञानी की वाणी है मुनियों की वाणी है आचार्यों की श्री गुरु की वाणी है तो उसमें अवश्य निमित्तत्व होता ही है क्योंकि आत्मा को स्पर्श करके निकली हुई वो वाणी है। लेकिन किसको उसका लाभ मिलता है वो बात थोड़ी अलग है निमित्तत्व नहीं है सदंतर ऐसा तो नहीं है। इसलिए परमागम आदि वो वाणी है वो वाणी को की पूज्यता बतलाई है और हमारे यहाँ इसकी पूजा भी करने में आती है ज्ञान पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं है? हाँ वो सम्यक ज्ञान का दिन है 13 से वो सम्यक दर्शन का है 14 सम्यक ज्ञान का है और पूनम सम्यक चारित्र का दिन बोला जाता है। 3 रत्न की पूजा करते हैं कि नहीं करते उसमें निश्चय रत्न त्रय भी आता है और व्यवहार रत्न त्रय भी आता है। होता है
यहाँ निमित्त का लेकिन नियम सार में तो सत्पुरुष को ही अंतरंग हेतु का है
हेतु कहा है
यहाँ निमित्त शब्द है तो हल्का मतलब दोनों में फर्क तो बहुत है अंतरंग हेतु और निमित्त
निमित्त को हेतु के वाच्यार्थ में भी ले सकते हैं हेतु को हो निमित्त को हो और इससे आगे बढ़ करके सत्पुरुष को सम्यक दर्शन के अंगभूत कहो और समीप ले जाना हो तो अंगभूत कहो तो भी है बात तो महिमा करने की है महिमा घटाने की नहीं है महिमा
करने की
बढ़ाने के वास्तविकता हो तो सच्ची महिमा आवे ने, झूठी महिमा थोड़ी ने करना है। महिमा तब आएगा, वास्तविकता होगी तब आएगा। वो तो कल रात को चला था कि क्या वास्तविकता है इसमें।
हाँ
बहुत बात है, गंभीर बात है, ज्यादा गंभीर बात है। नियम सार में आया ने वो अपने प्रवचन नवनीत भाग दूसरे में वो प्रवचन है, वहाँ सत्पुरुष को सम्यक दर्शन के हेतु कहने अंतरंग हेतु कहा, हेतु के अंतरंग हेतु कहा है, बाह्य हेतु नहीं कहा, अंतरंग हेतु बोला है। वहाँ मूल गाथा में वो बात है कुंकुंदाचार्य के। इसलिए तो कृपाजी जी ने कहा कि ये शास्त्र लक्ष्य है, ये शास्त्र का लक्ष्य है। इसलिए प्रत्यक्ष गुरु का उपदेश और परमागम का प्रयोजन भूत ज्ञान, प्रत्यक्ष गुरु का उपदेश में से भी प्रयोजन तो अलग हमको छांटना पड़ेगा। जैसे गुरुदेव के एक घंटे का प्रवचन आज भी हमने प्रवचन सुन लिया, हमेशा एक घंटा दो घंटा तीन तीन घंटा हम प्रवचन सुनते हैं, वो बात आ जाएगी। गिनती करेगा, क्या करेगा? गिनती करेगा। गिनती किसकी होती है? जहां अपनत्व होता है वहां गिनती नहीं होती है, जहां परायापन होता है वहां गिनती होती है। कहां होती है? परायापन में गिनती होती है। आज तो हमारे यहां 10 मेहमान गिने या 2 मेहमान गिने, लेकिन हम यहां कहते हैं कि आज हमारे परिवार को हमने गिनाया, ऐसा कोई बोलते हैं?
वहां
गिनती नहीं होती है। और परिवार में ज्यादा लोग होते हैं तो इसकी गिनती होती है, कि इसका हर्ष होता है, तो गिनती गिनती नहीं होती। तो ऐसा अपना प्रयोजन का उपदेश भी गुरु के उपदेश में से अलग छांटना चाहिए, जब ये प्रयोजन भूत ज्ञान गिनने में आता है, और आगम भी पढ़े परमागम भी पढ़े तो उसमें से भी अपना प्रयोजन वाली बात अलग छांटनी चाहिए और उसको मुख्य करना, बाकी जानकारी करके गौण कर देना। ये प्रबल निमित्त है। चैतन्य का स्पर्श कर से करके निकलती हुई वाणी, देखो वाणी कैसे ली है, चैतन्य स्वरूप का स्पर्श करके, आत्म स्वरूप का स्पर्श करके निकलती हुई वाणी मुमुक्षु को हृदय में उतर जाती है। ठीक, वाणी उतर जाती है, तो वाणी का वाच्य है वो उतर जाता है, यानी वो परिणमन कर लेता है हृदय में, अंतर परिणमन। जो बात श्री गुरु वाणी से बताते हैं उस रूप मुमुक्षु परिणमन कर लेता है। क्यों? ये वाणी ऐसी क्वालिटी की है कि जो चैतन्य को स्पर्श करके निकलती हुई आ रही है। आत्मा के अलौकिक गुणों का प्रभाव उस वाणी पर है। क्या? वाणी पर अपूर्व गुणों का प्रभाव है। तो वाणी में भी कोई ऐसा ध्वनि होता है, अंतर्ध्वनि ऐसा होता है कि उसकी दिव्यता मालूम पड़ती है और मुमुक्षु के अंतर परिणमन में वो सीधा असर निमित निमित संस्कार झेल लेता है। जो पात्र मुमुक्षु है तो बराबर उसको जो वाणी है उस अनुसार परिणमन कर लेता है, ऐसा बनता है।
गुरुदेव की वाणी चेतन स्पर्शित थी और सोगन जी ने और काम कर लिया और हम तो रह गए
क्योंकि हमने वो वाणी की गहराई में जाने का पुरुषार्थ किया
नहीं।
जब जब गुरुदेव प्रवचन करते थे तब हम सुनते थे या गुरुदेव में कुछ देखते भी थे, क्या बात थी, क्या किया देखो क्या किया हमने। जब गुरुदेव प्रवचन करते थे तब हमने सुन लिया, कई लोग तो ऐसे नीचा देख करके सुन लेते हैं, कहीं आंख बंद करके कोई सुन लेते थे, हाँ तो अकेला सुना या हमने कुछ देखा भी, पर देखा तो क्या देखा, उतनी बात है कि गुरुदेव के मन वचन काया की चेष्टा में उनके अंतर परिणमन का अद्भुत रहस्य है। तो कहीं कहीं हमने देखा तो नहीं देखा, अगर देखा तो हम भी परिणमन, हमारा भी परिणमन हो जाएगा, अगर नहीं देखेंगे तो हमारा परिणमन होने वाला
नहीं है,
नहीं है। वो बात है, आता है 172 में सत्पुरुषों के मन वचन काया की चेष्टा का अद्भुत रहस्यों का निविध्यासन करना, देखना नहीं शब्द लिया है वहां, तो वहां देखना शब्द का प्रयोग नहीं किया है, देखना शब्द नहीं लिया है, क्यों तो देखने को तो चक्षु इंद्रिय को उपयोग लेते हैं लोग, आंख से देखो ऐसा नहीं, अंदर में एक वीडियो का स्क्रीन है, वीडियो जैसा एक अंदर में स्क्रीन है, उसको विजुअलाइज करना, इनके अंदर परिणमन को अंदर में विजुअलाइज करना, तो विजुअलाइज करते हुए परिणमन करने लग जाएगा, खुद खुद परिणमन करने लग जाएगा, जैसे सोगाने जी कर लिया वैसा हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा वैसा हो ही जाएगा, ये बात है। ये श्री गुरु के हृदय में प्रवेश करने की बात है, अगर यहां तक पहुंचे तो गुरु के हृदय में आएगा कि ये कोई है, निधिध्यासन करने वाला भी कोई है, तो इनके पर प्रसन्नता आएगी, इनके पर कृपा हो जाएगी, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, क्या लिखा है, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, किसका ध्यान करना, गुरु का ध्यान करना, पूजा मूलम गुरु पादम, पूजा किसकी करना, गुरु के चरण की पूजा करना, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु के एक एक वचन संजीवनी मंत्र है, अमर अमर कर देता है जीव को, और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की प्रसन्नता है तो जीव का मोक्ष हो जाएगा, जिसके पर गुरु की प्रसन्नता आई इसका मोक्ष हो जाएगा, क्यों आई, तो गुरु के अंतरंग में प्रवेश उसने कर लिया, और गुरु की वाणी ने इसके अंतरंग में प्रवेश कर लिया, इसलिए ऐसा होता है। क्या कहते हैं कि चैतन्य का स्पर्श करके निकलती हुई वाणी, मैंने वाणी निकलने में चैतन्य का परिणमन है, तो इसकी आधार भूमि है, कहां से उठी वो वाणी, कहां से उभी है वो, उसकी कोई आधार भी नहीं है क्या? कि चैतन्य सत्ता आत्मा जो परिपूर्ण शुद्ध चैतन्य सत्ता वाला है उसके अवलंबन से निकली, वो अवलंबन लेते लेते निकली। क्या होता है कि ज्ञानी का पुरुषार्थ है उसमें अपने स्वरूप प्रति का परिणाम में जोर होता है। देखो ये छरी और चाकू को धार निकालते ना, तो जब उसको सरान पर लगाते हैं तो दो बाजू पकड़ करके बीच में जो बीच देंगे, ऐसे स्वरूप के प्रति बीस लगाते लगाते वाणी निकलती है। जबकि जिसको आत्मस्वरूप का पता नहीं है तो राग के बीस में बोलते हैं, उसको बोलने का राग आता है और राग के राग पर बीस लगाता है तो वो वाणी निकलती है। तो एक पवित्र आत्मा पर बीस लगाते हुए निकलती वाणी है और एक मलिन राग पर बीस लगाते हुए वाणी, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। शब्द भले यूं का यूं हो, शब्द भले वही शब्द हो, दोनों में बीस देने में बहुत बड़ा अंतर है। वो जो पुरुषार्थ युक्त वाणी निकलती है उसको कहते हैं या चैतन्य का स्पर्श करके निकलती हुई वाणी है। फिर धार को तपासना होता है, वो तो मुलायम स्पर्श से तपासना पड़ता है। वहां बीस देने देवे तो आंगली कट जावे, उंगली कट जावे वहां बीस देवे तो। ऐसे परिवार को धार कितनी निकले तो ऊपर ऊपर थोड़ा मुलायम स्पर्श से समझने की बात है। बीस देने की बात नहीं है, परिवार पर बीस देने की बात नहीं है, वो तो धार निकले वो ऊपर ऊपर से देख लेना है। बीस देना है तो स्वरूप ध्रुव आत्मा पे चैतन्य पे भेज देना है। ऐसी वाणी पात्र मुमुक्षु को हृदय में उतर जाती है। मुमुक्षु ने ऐसा मुमुक्षु लिया है, मुमुक्षु ने जिसको भगवानी अंदर में उतरती है ऐसा नहीं लिया है, जिसको वाणी अंदर उतरती है ऐसा मुमुक्षु लिया है। वो मुमुक्षु को तो उतर जाती है और वही मुमुक्षु है।
उत्कृष्ट मुमुक्षु लिया
है,
उत्कृष्ट मुमुक्षु लिया, सर्वोत्कृष्ट मुमुक्षु लिया।
हाँ, उत्कृष्ट पात्र लिया है कि जिसको वाणी
मध्यम जगने वाले को
नहीं उतरती है, उनको नहीं उतरती है। आत्मस्पर्श वाणी आती हो, देखो एक बहुत सुंदर बात किया है इधर, आत्मस्पर्शी वाणी आती हो और जीव एकदम रुचिपूर्वक सुने। देखो सुनना किस ढंग से, दूसरा आगे का काम नहीं हो तो आत्मस्पर्शी वाणी आती हो और जीव एकदम रुचिपूर्वक सुने उसको। आत्मस्पर्शी वाणी में क्या होता है तो उस वाणी में आत्मरस झलकता है। क्या होता है?
आत्मरस
झलकता है, आत्मरस छलकता है और सुनने वाले को उसकी रुचि होती है। हा? तो एकदम रुचिपूर्वक मैंने तीव्र रुचिपूर्वक अगर सुने तो सम्यक्त्व के निकट वो जीव हो जाता है। जाओ तो बेंसरे ले गए, सम्यक्त्व के निकट ले गए। कैसे कैसे ले गए देखो, रुचि पूर्वक सुनना। जिसको सुनने की रुचि है उनको सम्यक्त्व की निकटता आ जाती है। सुबह ने जैसे प्राप्त कर लिया अलग बात है, रुचि से कम सुनो। रुचि होनी चाहिए, रुचि काय में से उत्पन्न होती है, जरूरत में से उत्पन्न होती है। तो जरूरत लगी क्या, और जरूरत लगी तो कितनी जरूरत लगी, कितनी गरज हुई। तो जो गरज दिखाते थे गरज का एक बहुत बड़ा दृष्टांत देते थे कि भगवान के समोसरण में सौधर्म आदि इंद्र सुनने को आते हैं। सौधर्म इंद्र का फिर वर्णन भी कर लेते हैं कि 32 लाख विमान का साहिब है, मैंने धनी है। कैसे तो विमान के एक एक विमान में असंख्य रुद्धिधारी देव होते हैं। रुद्धिधारी देव एक एक दो पांच करोड़ दो करोड़ अरब नहीं, असंख्य होते हैं। अरबों से संख्या भी इसकी ज्यादा होती है। ऐसा 32 लाख विमान का साहिबा वो भी भगवान के समुसरण में आ गए तो पिल्लू की तरह गरुड़िया पिल्लू की तरह बैठ करके सुने
है।
इतना विनय करते हैं तो सम्यक दृष्टि है। एक भलतारी है यहाँ से निकलकर मनुष्य होकर के मोक्ष जाने वाला है। ज्ञानी है, परमात्मा है, फिर भी भगवान के वाणी सुनने में उतना विनय है उसको। ऐसा विनय होता है तो उसको परिणमन भी ऐसा ही होता है। इसमें भगवान को जरूरत नहीं है विनय की। गुरु को भगवान को ज्ञानी को अगले के विनय की जरूरत नहीं है। विनय तो अपने लाभ में जाता है, भले दूसरों को प्रति विनय होता है लेकिन लाभ किसको होता है? लाभ तो अपने को होता है। जरूरत हो तो रुचि हो, और रुचि हो तो परिणमन की समीपता और सम्यक दर्शन आदि परिणमन की समीपता हो जाए। तो कम से कम रुचि से सुना हो तो इतना लाभ होता है। और जिसको स्वभाव का संस्कार पड़ता है वो भी रुचि के काल में पड़ता है। रुचि के काल में पड़ता है। वो बैंसरी का जो डायरी है ना उसमें वो बात गुरुदेव के लिए उन्होंने लिखी है कि फतेह कुमार को अध्यात्म की रुचि बहुत थी। वहां क्या था?
अध्यात्म की रुचि
बहुत थी, ऐसा शब्द लिखा है पूरे भाव में। जाति स्मरण का विषय में वो बात लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो अध्यात्म की रुचि है, अध्यात्म तत्व की रुचि है, वो आत्म तत्व की रुचि है। आत्मा ही अध्यात्म तत्व है, पर उसकी रुचि से संस्कार तो वहां ले लिया था। वो बात है उसमें। तो यहां आते ही समाचार मिलते ही वो संस्कार जागृत हो गया और परिणमन हो गया। तो रुचि पूर्वक जो सुनते हैं उनको संस्कार झेलने का, संस्कार मिलने का अवसर होता है, पर वो संस्कार कभी निष्फल जाता नहीं है। कभी वही भाव में किसी को प्राप्त कर लेता है तो दूसरे तीसरे भाव में सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है, और बहुत अल्प परिश्रम से उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अल्प परिश्रम से ही इसका मतलब तो निकटता नहीं, उसको निकट हो जाता है। ये बात लिखी है उसमें अनुभव भरा है कि रुचि से आत्मस्पर्शी वाणी को सुनने में आए तो सम्यक दर्शन के समीप हो जाएगा, तो धर्म के समीप हो जाएगा। क्योंकि यहां शुद्ध भाव नहीं लिया कि सुनता है, वो शुद्ध भाव बात नहीं लिया है, वहां रुचि का बात लिया है। शुद्ध भाव तो चारित्र गुण में होता है, लेकिन श्रद्धान में क्या हुआ कि आत्मा की रुचि हुई। ज्ञान में क्या हुआ कि बहुमान हुआ गुरु का, बस वो उनको समीपता का कारण हो जाता है। हाँ, वो रुचि और श्रद्धा गुण की अवस्था है। रुचि और श्रद्धा गुण की अवस्था है। आत्म रुचि संकित भला है आता है छठ भला में, उसको संकित को आत्मरुचि बोला है, श्रद्धा के पर्याय है। ये हुआ 386 नंबर का विश्राम व्रत हुआ। अब आगे 333 लेना है।
333
गुजराती
में
112 हिंदी में 131 पाना। छेद कर रहना मुमुक्षु जीव को इस वचनामृत में कुछ मार्गदर्शन दिया है। मार्गदर्शन का वचनामृत है कि छेद कर रहना यानी सावधान रहना यानी गफलत में मत रहना। मुझे आता है ऐसे जानकारी के गर्व के मार्ग पर नहीं जाना। मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, मुझे आता है कैसे साधना करना, मुझे आता है पढ़ना आता है, पढ़ाना आता है, सुनाना आता है, ध्यान करना आता है, ज्ञान करना आता है, तो गर्व के मार्ग पर नहीं जाना। मैंने अपने परिणामों की प्रशंसा नहीं करना तो गर्व हो जाएगा। मेरे परिणाम बहुत अच्छे हैं और पहले से अच्छे हैं। पहले ये होता था, अब ये कम हो गया है। जानकारी करना अलग बात है, उसकी मुख्यता देना नहीं चाहिए। गर्व के मार्ग पर नहीं जाना। विभाव के मार्ग पर तो अनादि से चल ही रहा है जी। विभाव के मार्ग पर तो अनादि से चल ही रहा है। मुझे आता है ऐसे जानकारी के मुख आपको वाक्य शो से आवरतनी मुखना रस्ते
कौन
बोल सर? गुजराती में बहुत सारे बात है, परगत भाषा से आवरत में हूफना रस्ते चढ़वू नहीं। हूफकने आवे से संतोष आ जाए, संतोष पकड़ता है उसको, आधार रहता है। मुझे भी आता है, मैं भी जानता हूं, हम भी जानते हैं, ऐसा नहीं हम नहीं जानते हैं। अरे इतने साल तो हमने प्रवचन सुने पर इतने इतने तो शास्त्र पढ़े हैं और इतना साल हो गया हमको स्वाध्याय करते करते, तो हम भी जानते हैं। वो बात जो आती है वो तो जीव को बहुत नुकसान का कारण बन जाती है।
पैसे की गर्मी रहती है, पैसे की इससे गर्मी रहती
है अंदर। वैसे तो हमारे यहाँ जो ठंडी के दिनों में रजाई और गर्म कपड़े से जो अंदर में गर्मी आती है तो क्या बोला के हमको ऊंफ मिली, ऐसा बोलते हैं। और बाहर में कोई हिम्मत देता है, कोई ना हिम्मत डिप्रेशन में आ जाता है, उसको कोई हिम्मत देता है तो फिर आपकी हिम्मत हमको मिल गई
आधार।
ऐसे मुझे आता है ऐसे आधार लेना
नहीं।
नहीं, परिणाम को बताना ठीक बात है लेकिन उसका आधार लेना वो दूसरी बात है। आधार मत लो, जान लो, जानने में तो सहज आएगा। वो तो ऊपर ऊपर की पर्याय ऊपर की सपाटी में होते हैं तो समझ में आ ही जाएगा, लेकिन आधार लेने की वो बात होनी चाहिए, उसका आधार मत लो। तो यहाँ मार्गदर्शन उस टाइप का है कि उसका आधार लेना नहीं चाहिए। विभाग के मार्ग पर तो अनादि से चल ही रहा है जी। अनादि से विभाव का ही रास्ता पकड़ा है उसने, उसमें आगे बढ़ता है। वहां से रोकने के लिए सिर पर गुरु होना चाहिए। क्या जीव को विभाव के रास्ते से रोकने वाला माथे सिर पर मैंने माथे गुरु होना चाहिए। देखो ये वैंसरी के वचनामृत में वो बात खास आती है, क्योंकि जीव बात बात में स्वच्छंद में चढ़ जाता है, तो जिसने माथे गुरु को धारण किया वो तो स्वच्छंद नहीं करेगा। मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, वो ऐसे ही लेगा और श्री गुरु की महिमा के आगे वो विनम्र होकर के चलेगा। मां से रोकने के लिए यानी विभाव के मार्ग पर चलने चलता है उसको रोकने के लिए सिर पर गुरु होना चाहिए, एक अपनी लगाम और एक दूसरे गुरु की लगाम हो तो जी पीछे मुड़े मैंने पाछो बढ़े। स्वच्छंद में आगे बढ़ने वाले तो एक श्री गुरु की लगाम हो, लगाम मैंने कंट्रोल करने वाले और एक अपनी समझ अपने आत्महित की बुद्धि आत्महित का अभिप्राय वो अपनी लगाम है। अपनी लगाम कौन सी है? कि अपना आत्महित का सावधानी आना, वही एक अपनी लगाम है और एक गुरु के पास विनती करना कि मेरे चलते हुए कहीं गड़बड़ हो जाए तो आप मुझे फटकार करके भी लाइन पर ले आना। हाँ वो तो है ही नहीं, इसको कंट्रोल में आना ही नहीं है तो श्री गुरु को बात स्वीकारेगा नहीं तो अपना परिणाम में भी कंट्रोल रहेगा नहीं। जो श्री गुरु की उपेक्षा करता है उनके परिणाम अपने आप कंट्रोल में कहां से रहेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता है। जानकारी के मान से दूर रहना अच्छा है, जो जानकारी मैं जानता हूं ऐसा मान मिलता है इसे तो दूर रहना अच्छा है। बाह्य प्रसिद्धि के प्रसंगों से दूर भागने में लाभ है, बाह्य प्रसिद्धि जितनी बढ़े ऐसे प्रसंग से भग जाना, कहा ऐसे प्रसंगों से भगते रहना, क्योंकि वो वहां से जीव फिसलता है तो पैर वहां से फिसलता है। ये सब प्रसंग निसार है, उसमें कोई सार नहीं है, कोई सुख मिलने वाला नहीं है। सारभूत तो एक आत्म स्वभाव है, एक आत्मा का स्वरूप है, वही सुखदायक है, वही आश्रय लायक है और वही सारभूत है। बाकी मान फान मिले तो कोई सारभूत नहीं है, मिला तो भी ठीक है, मिला तो भी भूल ही भूल है, पर नहीं मिला तो भूल नहीं मिले, इसमें क्या रह गया, बस ऐसा लेना है। यहाँ तक रखा।